वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। किंतु इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान बाइबल अध्ययन की ओर लगाएं, मन की तैयारी के लिए प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं उन सभी नए मित्रों का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों पहले कुरिन्थियों की पत्री जो नए नियम की पुस्तक में से है उसका अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और जो उस पर विश्वास करते हैं वे उसके आने पर जीवित किए जाएंगे। आज हम अपने अध्ययन में उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए जिसे आप हमारे जीवन में बड़ी दया के द्वारा देते हैं। पिताजी, आज जब हम आपकी निकटता में आते हैं, आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, उनके हृदय को, उनके विचारों को, उनके एकाग्रतापन को खोल दीजिए ताकि जब हम आपके वचन में से सीखें, सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। आज जो भाई बहन निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, अपनी आशाओं को खो बैठे हैं, पिताजी आप उनके जीवन में नई आशाओं को उत्पन्न करें ताकि वे इस बात को जान सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं, क्योंकि आप प्रेमी और दयालु परमेश्वर हैं। हाँ पिताजी, आज की इस घड़ी हम सबको आप आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते हैं विनती सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले अध्ययन में हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे देख रहे थे। पौलुस पुनरुत्थान के सत्य को प्रमाणित करने की चर्चा में अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि कुरिन्थ में दार्शनिक विचारों के मनुष्य इसका उपहास करते थे। तो आइए आज हम आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 35 पद में हम पढ़ते हैं, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। यहां पौलुस दो प्रश्नों के उत्तर देगा, कैसे और क्या। मनुष्य देह के पुनरुत्थान और आत्मा के अमरत्व में अंतर नहीं कर पाता है। प्लेटो और सिसेरो ने आत्मा के अमर होने पर विचार प्रकट किए हैं। पौलुस देह के पुनरुत्थान के विषय चर्चा करता है। सदूकी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, अर्थात मरणोपरांत जीवन में। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 31 और 32 पद में पढ़ते हैं, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं, वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। जी हाँ, पुनरुत्थान के विपक्षियों को पौलुस मसीह यीशु के पुनरुत्थान का उदाहरण देता है कि उसकी देह का मृतकोत्थान हुआ है, अर्थात वह मृतकों में से जी उठा है। अब एक प्रश्न यह है, एक मृतक देह पुनर्जीवित होकर वैसी ही कैसे हो सकती है? पौलुस कहता है कि प्रकृति प्रकट करती है कि देह में एक रूपता नहीं होती है, वे समरूप होते हैं परंतु एक रूप नहीं होती। हम पहला क्रंथियों की पत्री 15 अध्याय के 36 पद में पढ़ते हैं, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। अब वह कैसे? के उत्तर में वह कहता है कि यदि तुम में अवलोकन क्षमता है तो तुम देख सकते हो कि एक बीज जो बोया जाता है उसमें नाश्वरता के साथ अनश्वरता भी होती है। बोए गए बीज से उसी के समरूप बीज उत्पन्न होते हैं, जबकि बीज मरकर समाप्त हो गया उससे उत्पन्न बीज वही नहीं जो मर गया है, अर्थात मर गया था। वे बीज वैसे ही हैं परंतु वह नहीं। बोए गए बीज में नाश्वरता तो है परंतु उसका अंत नहीं है। जी हाँ, यह भेद अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु अलगाव है परंतु आत्मा और व्यक्तित्व का अंत नहीं है। वे मरते नहीं हैं, आप प्रभु के पास चले जाते हैं यदि परमेश्वर की संतान है, तब देह नष्ट होती है। मृत्यु मनुष्य को देह से अलग कर देती है। देह तो सड़कर मिट्टी में मिल जाती है या खाक हो जाती है, और राख को राख केवल देह के साथ होता है। मेरे मित्रों, अब पौलुस दूसरे प्रश्न का उत्तर देगा, पुनरुत्थान की देह कैसी होती है? तो आइए देखें पहला क्रंथियों के पत्री 15 अध्याय के 37 पद में, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। जी हाँ, गेहूं का दाना इसका एक उदाहरण है, मसीह प्रथम फल है। हम बाद में आएंगे, हम कलीसिया के उठाए जाने की प्रतीक्षा में हैं जब मसीह विश्वासियों को संसार से ले जाएगा। यदि उस समय हम मर गए तो हम फिर जी उठेंगे। यदि हम जीवित रहे तो हमारा रूपांतरण होगा और हम उठा लिए जाएंगे। बीज की नई देह न तो बीज से प्राप्त होती है और न ही बोने वाले से, परमेश्वर ही है जो नई देह देता है। पहला क्रंथियों के पत्री 15 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। ध्यान दीजिए, अब पौलुस अपना चर्चा का विषय बदलता है। यह सब जीवन का भेद है, और सच तो यह है कि जीवन का भेद मृत्यु के भेद से बड़ा है। गेहूं के बीज से गेहूं ही उत्पन्न होता है, मक्का और जौ नहीं। पौधे में आने वाला बीज वैसा ही होता है जैसा आपने बोया था, वही तो नहीं परंतु ठीक वैसा ही। मेरे मित्रों, अब वह वनस्पति शास्त्र से जीव विज्ञान की चर्चा करता है। आइए देखें पहला क्रंथियों की पत्री 15 अध्याय के 39 पद में लिखा हुआ है, सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। जी हाँ, मृतक देह और पुनर्जीवित देह में जो अंतर है वह मनुष्य, पशु, मछली और चिड़िया के अंतर से बड़ा है। पौलुस कहता है कि सब मछलियां भी एक ही मांस की नहीं होती हैं। आगे देखते हैं पहला क्रंथियों के पत्री 15 अध्याय उसके 40 और 41 पद में, स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। अब वह खगोल शास्त्र की चर्चा करते हुए कहता है कि ब्रह्मांड के गण भी एक दूसरे के साथ एक रूप नहीं है। जी हाँ, सूर्य का पदार्थ चांद के पदार्थ से भिन्न है, वरन सितारों से भी भिन्न। सितारे भी एक दूसरे से भिन्न है। आकाश में सौर मंडल है, नक्षत्र है, ग्रह हैं और सितारे भी हैं। पहला क्रंथियों की पत्री 15 अध्याय के 42 पद में आगे लिखा हुआ है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में भी जी उठता है। मेरे मित्रों, आदम की देह मृत्यु के अधीन थी। यदि उसने पाप नहीं किया होता तो वह नहीं मरता, परंतु पुनरुत्थान के द्वारा हम अनश्वर देह प्राप्त करते हैं, अर्थात उस देह को प्राप्त करते हैं जो नाश नहीं होता। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 43 पद में आगे लिखा है, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। जी हाँ, हमें नई देह में महिमा, रूप, रंग और शक्ति आदि सब मिलेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 44 पद में हम पढ़ते हैं, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ध्यान दीजिए, वर्षों पूर्व की बात है कि एक सभा में पुनरुत्थान पर वाद विवाद किया जा रहा था कि वह आत्मिक है या दैहिक। शिकागो विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने अपना लेख पढ़ना आरंभ किया जो इन पदों के आधार पर तैयार किया गया था। पढ़ने के बाद उसने कहा, भाइयों, आप देख सकते हैं कि पुनरुत्थान आत्मिक है क्योंकि यहाँ लिखा है आत्मिक देह। मुक्त विचारवादियों ने उसकी प्रशंसा की और एक ने तो यहाँ तक प्रस्तावित किया कि वे उस लेख को छपवाकर उसका वितरण करें। वहां एक और यूनानी विद्वान था, वह खड़ा हुआ तो मुक्त विचारवादियों में खलबली मची क्योंकि वह बड़ा ही जटिल प्रश्न पूछ सकता था। उसने कहा, मैं इस लेख के संपादक से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह लेखक बड़ी अनिश्चितता से देख रहा था और वह खड़ा हुआ। उसने पूछा, संज्ञा अधिक प्रभावी है या विशेषण? प्रश्न तो बड़ा ही सरल है, परंतु कृपया इसका उत्तर दीजिए। वह उत्तर तो नहीं देना चाहता था, परंतु उसे उत्तर देने पर बाध्य होना पड़ा। निश्चय ही संज्ञा अधिक प्रभावी है। डॉक्टर, आपने जो लेख पढ़ा उसमें आपने संज्ञा की अपेक्षा विशेषण को अधिक प्रभावी बताया है, तो आइए हम इस पद को फिर से देखें। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। उन्होंने कहा, पुनरुत्थान में जाने वाली वस्तु देह ही है, मरने वाली देह अलग होती है। स्वाभाविक देह और जी उठने वाली देह अलग होती है। आत्मिक देह जो आत्मिकता के वश में होती है, परंतु रहती वह देह ही है। इस सभा ने वह लेख कभी नहीं छपवाया, उन्होंने उसे छपवाना उचित नहीं समझा। मित्रों देखिए, व्याकरण के इस छोटे से अभ्यास ने उस महान प्राध्यापक की समस्या का समाधान कर दिया था। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 45 पद में पढ़ते हैं, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। मेरे प्रियो, पहला मनुष्य आदम शारीरिक और मानसिक था, अंतिम आदम मसीह आत्मिक था। हम आगे देखते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 46 और 47 पद में, परंतु पहले आत्मिक न था वह स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। ध्यान दीजिए कि पहला आदम मिट्टी था, आप चाहे तो उसे कूड़ा कह सकते हैं। आज पर्यावरण के लिए बहुत ही चिंता व्यक्त करने वाली बात है, पृथ्वी को किसने अशुद्ध किया है? आदम ने, क्योंकि आदम दैहिक है। मनुष्य द्वारा त्यागी गई प्रत्येक वस्तु कूड़ा है, वह ऐसा ही प्राणी है, वह कूड़ेदान को भर देता है, परंतु दूसरा आदम स्वर्ग का प्रभु है। आइए देखें पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 48 से 50 पद में लिखा हुआ है, जैसा वह मिट्टी था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। मित्रों ध्यान दे, हम सब दैहिक हैं अर्थात पार्थिव हैं, क्योंकि हम आदम के वंशज हैं, यही हमारी दशा है। परंतु हम मसीह में हैं, हम उससे जुड़ गए हैं, इसलिए हमें आशा है और अनंत देह में पुनरुत्थान और सदा काल तक मसीह की संगति में है। आज हमारा रूप दैहिक है, परंतु उस दिन की प्रतीक्षा में है जब हमारा रूप स्वर्गीय होगा, स्वर्गीय होगा। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, हमारी यह देह स्वर्ग नहीं जाएगी। मैं इससे प्रसन्न हूं, परमेश्वर इस देह को कर्मशाला में नहीं भेजेगा। मेरे प्रियो, नाश्वर अनश्वर का वारिस नहीं हो सकता। इस देह को बीज के समान मिट्टी में जाना होगा। हमारे लिए एक नया मंडप, एक नई देह होगी जो इस देह के स्वरूप तो होगी परंतु ऐसी नहीं होगी। मेरे मित्रों, कुछ नास्तिक ऐसे हैं जो मरने के बाद अपने देह को दाह करके समुद्र पर बिखराना चाहते हैं कि परमेश्वर नई देह तैयार ना कर पाए। क्या आपके विचार में परमेश्वर राख के उन कणों को फिर से संयोजित नहीं कर सकता है? मित्रों, हो सकता है वह अन्य नए तत्वों से हमारी आत्मिक देह बनाए। इस अर्थहीन बात पर पुनरुत्थान का खंडन करना कैसी मूर्खता है। वे सोचते हैं कि यदि पुनरुत्थान हो तो परमेश्वर उनकी देह बनाने में असफल हो जाएगा। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर ने आदि में आदम की रचना की थी तो क्या वह अब भी वैसी देह तैयार नहीं कर सकता? वह क्या परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर आपकी देह को उठाएगा, चाहे वह कब्र में से उठे या समुद्र में से। अतः आरंभिक कलीसिया की पहली भ्रमपूर्ण शिक्षा थी कि देह का पुनरुत्थान नहीं है। आपने देखा कि पौलुस ने पुनरुत्थान के सत्य को सिद्ध करके दिखाया है। उसने अपने युग के तीन दार्शनिक विचारों का खंडन किया है। इपिकुरियन विचारकों का कहना था कि मरणोपरांत जीवन नहीं है। पौलुस का प्रतिवाद था कि मसीह यीशु मरकर जी उठा और हम भी एक दिन फिर से जी उठेंगे। प्लेटो के अनुयायियों का मानना था कि आत्मा अमर है परंतु देह का पुनरुत्थान संभव नहीं है। पौलुस के प्रतिवाद में स्वाभाविक देह मरकर आत्मिक देह में परिणत हो जाती है। तो मित्रों, आइए अब हम आगे देखेंगे पुनरुत्थान का सामर्थ्य। पहला क्रंथियों की पत्री 15 अध्याय उसके 51 पद में लिखा है, देखो तुम में से भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। जी हाँ, यह भेद क्या है? हमने अनेक बार इस विषय में चर्चा की है। भेद हुआ है जो पुराने नियम में प्रकट नहीं था परंतु नए नियम में अब प्रकट है। भेद को आप आंखों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते और न ही सोच सकते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल परमेश्वर प्रकट करता है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। जी हाँ, हम सब चाहे मरें या जीवित रहें, सब बदल जाएंगे। कभी कभी हम मनुष्यों को कहते हुए सुनते हैं, काश मैं मसीह के आने पर जीवित रहूं कि उसकी उपस्थिति में प्रवेश करूं। उसकी उपस्थिति में आने के लिए हमें बदलना आवश्यक होगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 52 पद में लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पल भर अर्थात क्षण भर में, समय के सबसे छोटे भाग में पौलुस ने जो शब्द लिखा है वह है अणु। वैज्ञानिक सोचते हैं कि उन्होंने पदार्थ का सबसे छोटा कण खोज लिया है जिससे वे अणु कहते हैं, परंतु वास्तव में वह एक अणु नहीं, खंड है। पत्रस तो वैज्ञानिक नहीं था, परंतु जब वह अग्नि परीक्षा की बात करता है तब वह खंड शब्द का उपयोग करता है कि वह आग में जलकर भस्म हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा विज्ञान का ज्ञान रखता है। जी हाँ, पलक मारते ही, यह कितना समय होता है? पलक मारना, पलक का गिरना या उठना, या गिरना उठना दोनों होता है। इसका अर्थ है सेकेंड के एक भाग में। समय इतना भी नहीं होगा कि हम कह पाए वह आ रहा है या देखो वहां है। जी हाँ, अंतिम तुरही, इसका क्या अर्थ है? अंतिम तुरही क्या है? उसकी अंतिम पुकार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 से 13 पद में यूहन्ना लिखता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, और उसने पलट कर देखा, वह मसीह यीशु था। अतः तुरही प्रभु यीशु की वाणी है जो मनुष्य को अंतिम बार पुकारेगा। वह मृतकों को पुकारेगा और वे जीवित हो जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 43 पद में यीशु ने मृतक लाजर को पुकारा, हे लाजर निकल आ। एक दिन वह मुझसे कहेगा, हे कामिल निकल आ। वह आपको भी नाम लेकर के पुकारेगा, हे शमूएल निकल आ। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मेरे मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 53 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ध्यान दीजिए, वह कहता है अवश्य है, हम जैसे हैं वैसे ही स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, हम इस देह को लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते, हमारी यह देह सीमित है, इसमें रहकर हम स्वर्ग का दृश्य नहीं देख पाएंगे और न ही वहां का संगीत सुन पाएंगे। जी हाँ, जहां तक स्वर्ग का प्रश्न है, हम अंधे और बहरे हैं, यहाँ पृथ्वी पर भी हम वास्तव में बहुत कम देखते हैं और बहुत कम सुनते हैं। इन पार्थिव शरीरों में तो हम स्वर्ग की आधी से अधिक बातों से वंचित रह जाएंगे। अतः मित्रों, मैं स्वर्ग में किसी बात से वंचित होना नहीं चाहता, अतः मुझे नई देह की आवश्यकता है। अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 54 पद में लिखा हुआ है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। यह पुनरुत्थान की विजय है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 55 से 57 पद में लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मेरे प्रियो, मैंने एक बाइबल शिक्षक को कहते सुना, परमेश्वर ने मृत्यु का डंक निकाल दिया तो वह ऐसी हो गई जैसे मधुमक्खी जिसका डंक नहीं है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि मधुमक्खी का डंक कब निकाला गया और न ही मैं प्रत्येक मधुमक्खी से पूछ सकता कि उसका डंक है या नहीं, अतः मैं प्रत्येक मधुमक्खी से डरता हूं। जी हाँ, मृत्यु का डंक नहीं रहा, क्योंकि हमें मृत्यु के पार देखना है। मृत्यु अनंत समय के विशाल क्षेत्र का द्वार है, परंतु मैं उस द्वार से जाना नहीं चाहता। लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु जयवंत हुई। कुछ लोग सफल व्यापारी रहे हैं, परंतु मृत्यु उन पर वशवर्ती हुई है। अनेक जन बड़े नेता बनते हैं, परंतु मृत्यु से नहीं बच पाते हैं। मृत्यु एक भयानक दैत्य है, एक शैतान की तरह है, परंतु मसीह उस मार्ग से होकर गया, जिस प्रकार वाचा का संदूक यर्दन में उतरकर पार लाया गया, उसी प्रकार मसीह भी मृत्यु को पार करके अर्थात मृत्यु के पानी के पार गया, और वह मुझसे कहता है, मैं तेरा चरवाहा हूं। स्मरण रख कि मैं तुझे जीवन से ही पार नहीं लगाया, मैं तुझे मृत्यु के गहरे जल से भी पार लगाऊंगा और तुझे अनंत जीवन में ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं एक बालक की नहीं डरता हूं, परंतु मैं उसके कील से छीदे हुए हाथों में अपना हाथ थमाकर उसकी अगुवाई में पार लगता हूं। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। मेरे प्रियो, मृत्यु का डंक पाप है, पाप ही का डंक खतरनाक है, पाप का बल व्यवस्था है, व्यवस्था हमारा पाप प्रकट करने वाला दर्पण है, आईना है जिसमें हम अपने पापों को देखते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। कैसे? क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, चतुर हैं और जयवंत हैं। जी नहीं, विजय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 पद में महाक्लेश के पवित्र जनों के बारे में लिखा है कि वे मेमने के लहू द्वारा शैतान पर जयवंत हुए। जी हाँ, यही हमारे एकमात्र विजय का मार्ग है। आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके अंतिम पद अर्थात 58 पद को। लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जी हाँ, मेरे विचार में यह पद अध्याय 1 के 9 पद से संबंधित है। परमेश्वर सच्चा है। ओह, वह कैसा महान है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मैं उसके पुत्र की संगति में बुलाया गया हूँ। पौलुस इस पत्र में हमें कह चुका है कि सब वस्तुएं हमारे लिए हैं। उसने कहा कि पौलुस, अपोलुस, कैफा, संसार, जीवन, मृत्यु, वर्तमान और भविष्य की सब वस्तुएं हमारी हैं और हम मसीह के हैं। जीवन हमारा है और मैं जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मृत्यु भी हमारी है क्योंकि हमारे पास वह है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ है। इस समय की सब वस्तुएं और अनंत काल की सब वस्तुएं हमारी है। हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर के हैं। मेरे मित्रों, क्या आज आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत से बढ़कर है? वह मुझे मृत्यु से पार लेकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, आज आप निर्णय लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीखिए और जानिए, क्योंकि वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य जो पापी है उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे और अपने राज्य में वह उसे ले जाना चाहता है। मेरे मित्रों, आज के इस अध्ययन में हम इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में जयवंत हुआ है। वह मर गया, गाड़ा गया और जी उठा है, और हम उसके आने पर बदल जाएंगे। हमारा पुनरुत्थान होगा और हम इस देह के साथ नहीं लेकिन रूपांतरित, परिवर्तित देह के साथ उसके साथ उठा लिए जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप भी अनंत जीवन को प्राप्त करें? यदि हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने जीवन में उसे ग्रहण करें, उसे आने दें और कहें, प्रभु मैं आपकी निकटता में रहना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में गंभीर और महत्वपूर्ण बातों को सीखा है और आप इसका अनुसरण अवश्य करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु।